ओम शांति। तो आज आप हम सभी फिर से अव्यक्त मुरली को रिवाइज करेंगे, जो कि आज की अव्यक्त मुरली है 11/11/18 और उसकी रिवाइज डेट है 26/2/84। मुरली का टाइटल है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला और मुरली रिवीजन का मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड। तो मुरली से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कॉन्ट्रास्ट के, जिसमें कि पहली पॉइंट है चित्रशाला। संसार की चित्रशालाएं जो हैं और बाबा के जो अद्भुत चित्रशाला है, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट। तो हम सभी जानते हैं संसार में जो विशेष आत्माएं जो विशेष कार्य करके जाते हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में है, साइंस के क्षेत्र में है या अन्य किसी भी फील्ड में, लोग उनकी विशेष चित्रशालाएं या म्यूजियम बनाकर रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनको देखे, उनको समझे, उनसे प्रेरणा ले और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए। तो जो वहाँ चित्रशालाएं होती हैं वो हद की होती हैं, और वो चित्रशालाएं जो होती हैं वो किसी एक विशेष व्यक्ति पर डिपेंड होती हैं। लेकिन जो बाबा की चित्रशाला है ये बेहद की है। तो बाबा ने इस चित्रशाला में देखा कि जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उन सभी ब्राह्मण आत्माओं के जन्म से लेकर के अब तक के जो उनका चरित्र रहा है, उस चरित्र के हर एक चरित्र का चित्र उस चित्रशाला में है, कि जन्म से लेकर के हर एक ब्राह्मण आत्मा के चित्र कैसे कैसे रहे हैं। तो उनमें विशेषकर बाबा ने तीन बातें देखी। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहले प्योरिटी की पर्सनैलिटी, और दूसरी रियलिटी की रॉयल्टी, और तीसरी संबंध की समीपता। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी में बाबा ने क्या कहा कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का जो चित्र है, उस चित्र के अंदर जो उसका ओरा है लाइट का, उसके माध्यम से बाबा ने देखा कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का जो चित्र है, उस चित्र के आसपास जो उसका ओरा क्या है, उसके हिसाब से बाबा ने प्योरिटी की पर्सनैलिटी को देखा और रियलिटी की रॉयल्टी को हर्षित मुक्ता और स्वच्छता, इन दो रूपों से देखा। और तीसरी बात दोनों की चमक, हर्षित मुक्ता और स्वच्छता, और तीसरी बात संबंध की समीपता। तो हर एक आत्मा के मस्तक में लाइट की किरणें चमक तो ही बाबा ने देखी, लेकिन किसी की किरणें बहुत ज्यादा फैली हुई थी और किसी की किरणें कुछ कम थी। तो ये बाबा ने जो ब्राह्मण आत्माओं का चरित्र का चित्र है उसको देखा। किसमें देखा? अपने चित्रशाला में। तो दुनिया में जो चित्रशाला होती हैं वो भल मूवेबल होती हैं, लेकिन वो चेतन नहीं होती है, जड़ होती है, और भगवान चित्रशाला जो चैतन्य है। हाँ जी। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट है वैष्णव। तो दुनिया में जो वैष्णव होते हैं वो अपने आप को बहुत ऊंच कुल का समझते हैं, वो विशेष विष्णु के उपासक होते हैं, विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी विशेषताएं होती हैं, इसलिए वो औरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। उनके खान पान की शुद्धि, उनका व्यवहार औरों से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बाबा ने कहा कि आप जो ब्राह्मण आत्माएं हो, आप सच्चे सच्चे वैष्णव हो। तो हम सभी जो वैष्णव हैं, हम सभी की क्या विशेषताएं होंगी? बाबा ने क्या कहा मुरली में आज? उनका जन्म से उनके जीवन में कौन कौन सी बातें होंगी? उनका मनसा वाचा कर्मणा हर बात में शुद्धि होगी। उनके अंदर स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी कमजोरी की अपवित्रता नहीं होगी। कब से? जन्म से, बचपन से। तो ये बहुत बड़ी एक हम सभी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि जन्म से ये सारी विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए, कि जन्म से हमारे जीवन में, जन्म से मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता हो, हर एक के लिए शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ भावनाएं ना हो। तो दूसरा कॉन्ट्रास्ट है वैष्णव, और तीसरा कॉन्ट्रास्ट है दर्पण। तो बाबा ने कहा कि दर्पण में अपने आप को देखो, जैसे बाप देखते हैं उस प्रकार से अपने आप को देखो, कि जो बाप आपको जिस रूप में देखते हैं आप अपने आप को उस रूप में देखते हो। ये दुनिया में दर्पण वर्तमान समय हर एक की जरूरत है, क्योंकि दर्पण सभी को अपने स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाता है। जैसे जब भी कोई भी सो करके रेस्ट करके उठते हैं तो क्या करते हैं, निद्रा से बाहर आते तो क्या करते हैं, पहले पहले जाके अपने आप को दर्पण में देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दर्पण का वर्तमान समय बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में जो एक्टर्स होते हैं वो तो हर पल दर्पण को देखते रहते हैं। जब उनका मेकअप होता है उसमें वो विशेषकर दर्पण को यूज करते हैं, क्योंकि उससे उनको अपने में एक फेथ बैठता है कि हमारा जो मेकअप है वो जैसा हमारा रोल है उस अनुसार है या नहीं है। अगर उस अनुसार उनका फेस होगा तो उनमें वो फेथ रहेगा। तो बाबा ने कहा कि दर्पण में अपने आप को देखो। वो कौन से दर्पण में? नॉलेज के दर्पण में। वैसे बाबा ने हम सभी को और भी कई सारे दर्पण दिए हैं, लेकिन बाबा ने इस मुरली में कहा कि नॉलेज के दर्पण में देखो, कि जैसे बाप आपको समझते हैं, देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं उस रूप में अपने आप को आप देखते हो। तो उस दर्पण में क्या क्या देखना है, जो बाबा ने विशेषकर हमारे चरित्र के बारे में जो कहा है, उन सारी बातों को देखना है। और अगला कॉन्ट्रास्ट है जो व्यक्त देश और अव्यक्त देश के बारे में। बाबा ने कहा कि जो व्यक्त देश है यहां पर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त वतन में कोई भी लाइन नहीं। यहां व्यक्त देश में जो है वो कई सारे कंडीशंस होती हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है और फॉलो करना जरूरी भी है। तो इस व्यक्त संसार में, व्यक्त वतन में कौन कौन सी बातें लागू होती हैं? समय। अगर यहां समय कम है और मिलने वाले अधिक हैं तो हर एक को कम समय मिलेगा मिलने का। तो यहां समय का भी कंडीशंस होती हैं, और स्थान भी। यदि स्थान छोटा है और मिलने वाले अधिक हैं, नंबर अधिक है तो उनको नंबर भी कम मिलेगा और मिलने का टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। अगर संख्या कम है तो लंबे समय तक मिल सकते हैं। जैसे यज्ञ की शुरुआत के दिनों में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, जब अव्यक्त बाबा दादा की पदरामणि हुई, तो पहले बाबा कमरे में आते थे, हिस्ट्री हॉल में आते थे, तो उस समय संख्या कम थी, समय बहुत था, मिलने वाले कम थे। तो बाबा के समय में उस समय लंबे समय तक मिल सकते थे, बैठ सकते थे, लेकिन वर्तमान समय वो समय समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो व्यक्त वतन है और अव्यक्त वतन, उनमें बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतन जो है वो बेहद का है, वहां जब चाहो, जितने चाहो, जितना समय चाहो, वहां करके आप मिल सकते हो, वहां कोई भी कंडीशंस नहीं है। इसी प्रकार से और भी कॉन्ट्रास्ट है, जैसे कि बाबा ने कहा कि एक है जड़, जो वृक्ष है, फाउंडेशन है, वृक्ष का फाउंडेशन, और दूसरा है सर्विस का फाउंडेशन। तो जैसे जड़ वृक्ष होता है, उसका फाउंडेशन जो अगर मजबूत होता है तो वृक्ष हरा भरा लंबे समय तक रहता है। लेकिन सारे वृक्ष को खाना पानी कहां से मिलता है? जड़ से मिलता है। तो इसी प्रकार से जो सर्विस के जो फाउंडेशन है, तो बाबा का आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप इतने शक्तिशाली हो तभी आप दूसरों की पालना कर रहे हो। तो जो फाउंडेशन हैं, जो आधार स्तंभ हैं, उनका हमेशा महत्व तो है ही है। भल नए नए जो हैं वो आगे जा रहे हैं, उनका नाम बाला हो रहा है, लेकिन आपका महत्व तो हमेशा है और रहेगा। और एक अगला कॉन्ट्रास्ट है, तो बाबा ने उसमें कहा कि जैसे दुनिया में भी छोटे बच्चों को आगे रखते हैं और बड़े पीछे रहते हैं, तो इस प्रकार से आप उनको आगे रखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो, आप हमेशा आगे हो ही हो। अगला कॉन्ट्रास्ट है, बाबा ने कहा कि जो भक्ति के यादगार स्थान है और आपका जो महातीर्थ है, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट। तो भक्ति मार्ग में जो भी तीर्थ स्थान बने उन पर वहां लोग जाते हैं अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के तीर्थ स्थान बने हुए हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो सारे जो भी भक्ति मार्ग में तीर्थ स्थान हैं वो सारे इस एक में समाये हुए जो मधुबन महातीर्थ स्थान है। तो इस प्रकार से और भी कुछ कॉन्ट्रास्ट हैं, लेकिन तो बाबा ने कहा कि यहाँ जो तीर्थ स्थान है, जैसे वहां लोगों को भावना होती है कि वहां जाएंगे तो कुछ हम वहां जाकर दान पुण्य करते हैं, कुछ अनुभव करने जाते हैं, और वहां कुछ छोड़कर के भी आते हैं। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो यहाँ मधुबन महातीर्थ पर आती हैं, वो भी उनके अंदर जो कुछ कमी कमजोरियां हैं जो उनको परेशान करती हैं, जो जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, वो यहाँ पर छोड़कर जाना है। छोड़कर जाएंगे तो यदि आप नेगेटिविटी छोड़ेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी या कोई भी विशेषता, कोई भी गुण आपके जीवन में उसके बदले आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो आप में कमी कमजोरी उसको छोड़कर जाना है। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्ट थे। ओम शांति।